एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो पुणे के स्टूडियो से
आपका हार्दिक स्वागत है।
यह हमारी अंतर्राष्ट्रीय हिंदी सेवा है।
हमारे आज के कार्यक्रम में हम आपके लिए एक प्रेरणादायक संदेश और प्रशंसा के गीत ले आए हैं।
आपको आध्यात्मिक रूप से मजबूत करने के लिए आप परमेश्वर का वचन सुनेंगे।
आप एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो सुन रहे हैं आशा की वाणी।
अधिक जानकारी के लिए हमसे संपर्क कर सकते हैं 1-800-833-2231 पर संपर्क करें या bible@awr.org पर ईमेल करें।
इस डाक पते पर हमें लिखने के लिए आपका स्वागत है। एडवेंटिस्ट मीडिया सेंटर, पोस्ट बॉक्स 1446, मार्केट यार्ड पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल कर सकते हैं hindirsamc@sudadventist.org। एक बार फिर ईमेल आईडी hindirsamc@sudadventist.org पर।
आप इस नंबर पर आपकी बाइबल अध्ययन में रुचि और प्रार्थना अनुरोध के साथ हमसे संपर्क कर सकते हैं। 9195-7285-9272।
आप हमारे सभी कार्यक्रमों को सुनने के लिए हमारी वेबसाइट awr.org पर भी लॉगिन कर सकते हैं। मैं दोहराता हूँ awr.org या awr360 मोबाइल ऐप डाउनलोड कर सकते हैं।
एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो AWR पुणे स्टूडियो से
हमारे साथ हैं श्रीमान रॉबिन्सन आर कुजूर परमेश्वर का वचन प्रस्तुत करने के लिए।
परमेश्वर का वचन सुनने से पहले आपके लिए एक मधुर गीत।
इसलिए भाइयों, मैं तुम्हें परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीरों को जीवत पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ। यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है।
जीवन तुम पर अर्पण कर दे, जगदाता।
समय है परमेश्वर का वचन सुनने का।
नमस्कार प्रिय श्रोताओं, मैं भाई रॉबिन्सन कुजूर परमेश्वर का सेवक परमेश्वर का वचन लेकर आपके पास आता हूँ। आइए हम परमेश्वर का वचन सुनने से पहले परमेश्वर पिता से प्रार्थना करें। हे हमारे महान दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम तेरे पास फिर से आते हैं, हम तेरे वचनों को सुनने चाहते हैं। पिता हमारे मनों को हमारे हृदयों को खोल दे और तेरे राह में चला। मैं मेरे श्रोताओं के लिए विशेष प्रार्थना करना चाहता हूँ पिता, कि उन्हें तू समझ शक्ति दे कि वे तेरे वचनों को समझ सके और तेरे राह में चलने सके। मेरे साथ हो पिता, तेरा पवित्र आत्मा का वरदान दे ताकि मैं तेरे वचनों को तेरे सामर्थ के द्वारा बतला सकूं। प्रभु यीशु के नाम से मांगता हूँ, सुना ग्रहण करें, आमीन। प्यारो, आज का मेरा संवाद का शीर्षक है महान विवाद पर पत्रस। हम पत्रस के एक लेख में पढ़ते हैं जो हमें मिलता है पहला पत्रस उसका 2:9 में। यहाँ लिखा है, परंतु तुम एक चुना हुआ वंश और राज पदधारी याजकों का समाज और पवित्र लोग और परमेश्वर की नीच प्रजा हो, इसलिए कि जिसने तुम्हें अंधकार में से अपनी अद्भुत ज्योति में बुलाया है उसके गुण प्रकट करो। पहला पत्रस 2:9। पत्रस के लेखन में महान विवाद विषय की भरमार है। शायद ऐसा इसलिए है क्योंकि वह खुद को दूसरों से बेहतर जानता था कि शैतान के धोखे में पड़ना कितना आसान है। इसलिए वह इस बात से अच्छी तरह वाकिफ था कि संघर्ष कितना वास्तविक है। आखिरकार यह पत्रस ही था जिसने लिखा, सचेत हो और जागते रहो क्योंकि तुम्हारा विरोधी शैतान गरजने वाले सिंह के समान इस खोज में रहता है कि किसको फाड़ खाए। इसे हम पाते हैं पहला पत्रस 5:8 में। पत्रस देखता है कि जो लोग कभी विश्वासियों के साथ संगति करते थे वे अब परमेश्वर और मसीह की वापसी के किसी भी विचार के प्रति संदेहपूर्ण और नकारात्मक हैं। वह इस संघर्ष को देखता है और वह उपहास करने वालों के खिलाफ दृढ़ता से और शक्तिशाली ढंग से बोलता है। फिर से शायद पत्रस अपनी असफलताओं के कारण ही विश्वास को इतनी सकारात्मकता से पुष्ट करता है। वह जानता है कि उपहास करना और इनकार करना और भीड़ के साथ तालमेल बिठाने की कोशिश करना कैसा होता है, ताकि दूसरे उसे यीशु का अनुयायी होने के लिए दोषी ना ठहराएं। इसलिए उसका जोर इस बात पर है कि विश्वासियों के लिए यह कितना महत्वपूर्ण है कि वे प्रभु में अपने उच्च बुलावे और चुनाव के योग्य और चिंतनशील जीवन जिए। हम अंधकार से प्रकाश की ओर बुलाए जाने के विषय पहला पत्रस 2:9-10 में पढ़ते हैं। ये आयते निर्गमन 19:6 याजकों का राज्य और पवित्र जाति से ली गई है और व्यवस्था विवरण 7:6 तथा व्यवस्था विवरण 14:2 में भी दोहराया गया है। पवित्र लोग अपने लिए चुने हुए लोग और एक विशेष खजाना, ये आश्वासन बेशक निर्गमन के दौरान दिए गए थे जब परमेश्वर के लोगों को गुलामी से मुक्त किया जा रहा था और वे वादा किए गए देश की ओर जा रहे थे। पत्रस निर्गमन के दौरान परमेश्वर के लोगों और अपने दिनों में कलीसिया के बीच एक समानता देखता है। इस प्रकार पत्रस के शब्द अंतिम उत्पाद का वर्णन नहीं है बल्कि प्रगति पर चल रहे कार्य का वर्णन है। हाँ, हमें उसके द्वारा चुना गया है और हमें शैतान द्वारा दुनिया को घेरे हुए अंधकार से हमें बाहर निकालने के लिए सार्वजनिक रूप से परमेश्वर की स्तुति करनी है, लेकिन यह हमें परिपूर्ण नहीं बनाता है या इसका मतलब यह नहीं है कि हम किसी तरह पहुंच गए हैं। यह हम पढ़ते हैं फिलिपियों 3:12 में। इसके विपरीत अपने स्वयं के पाप और कमियों के बारे में जागरूकता यीशु का अनुसरण करने और अपने जीवन में उसकी धार्मिकता की आवश्यकता को समझने का एक महत्वपूर्ण पहलू है। इस प्रकार हर पापी मसीह के पास आ सकता है। बहन एलन व्हाइट कहती है पुस्तक द डिजायर ऑफ एजेस में पृष्ठ 317 में ऐसा लिखा हुआ है, इस प्रकार हर पापी मसीह के पास आ सकता है। हमारे द्वारा किए गए धार्मिकता के कामों के कारण नहीं, बल्कि उसकी दया के अनुसार उसने हमें बचाया। तीतुस 3:5 कहता है, जब शैतान आपको बताता है कि आप एक पापी हैं और परमेश्वर से आशीर्वाद प्राप्त करने की आशा नहीं कर सकते, तो उसे बताएं कि मसीह पापियों को बचाने के लिए दुनिया में आया था। हमारे पास परमेश्वर को सिफारिश करने के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन हम जो दलील अभी और हमेशा दे सकते हैं वह हमारी पूरी तरह से असहाय स्थिति है, जो उसकी मुक्ति शक्ति को एक आवश्यकता बनाती है। सभी आत्मनिर्भरता को त्यागते हुए हम कलवरी के क्रूस को देख सकते हैं और कह सकते हैं, मेरे हाथ में कोई कीमत नहीं है, मैं केवल तेरे क्रूस को पकड़े हुए हूँ। इस तरह हम परमेश्वर के पास आ सकते हैं उस पर भरोसा करके। एक निश्चित तरीका जिससे हम जानते हैं कि हमें अंधकार से उसकी अद्भुत ज्योति में बुलाया गया है, 1 पत्रस 2:9 के अनुसार, वह यह है इस बात का एहसास कि हम मसीह पर कितने निर्भर हैं। 1 कुरिन्थियों 1:30 कहता है, वह परमेश्वर की ओर से हमारे लिए ज्ञान ठहरा, अर्थात हमारी धार्मिकता, पवित्रता और छुटकारा। 1 पत्रस 4:1-7 में हम पढ़ते हैं कि हमारी जीवन शैली के चुनाव महत्वपूर्ण हैं और वे मसीह की वापसी के लिए हमारी तत्परता को प्रभावित करते हैं। पत्रस टिप्पणी करता है कि विश्वासियों ने अपने जीवन का काफी समय दूसरों के दबाव में आकर वही करने में बिताया है, 1 पत्रस 4:3 के अनुसार। लेकिन अब चीजें बदल गई हैं और विश्वासियों को भीड़ में शामिल ना होने के लिए अजीब माना जा सकता है, जिसके परिणाम स्वरूप संभवतः उनके बारे में दुर्भावनापूर्ण गपशप फैलाई जा सकती है, 1 पत्रस 4:4। इस प्रकार शैतान हमारे पूर्व मित्रों का उपयोग करके हमें परमेश्वर के साथ चलने में हतोत्साहित करने का प्रयास करेगा। पत्रस विश्वासियों को प्रोत्साहित करता है कि वे इन हमलों से भयभीत ना हो। अन्य जातियों को परमेश्वर को अपना लेखा देना होगा, जो अकेले ही न्यायी है, इसलिए उन्हें इस बारे में चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है कि वे क्या सोचते हैं। 1 पत्रस 4:5 में वह लिखता है, उनका कहना महत्वपूर्ण है। आप कितने लोगों को जानते हैं जो दूसरों की अपेक्षाओं के दबाव में झुक गए हैं, बजाय इसके कि वे अपने विश्वास के लिए खड़े हों। यह खासकर युवा लोगों के लिए कठिन है जो साथियों के दबाव से जूझते हैं, लेकिन यह केवल युवाओं के लिए नहीं है, बड़ों के लिए भी है। जो दूसरों को देखते हैं उनके कहने से, उनके दबाव से अपने विचार को, अपने निर्णय को बदलते हैं, परमेश्वर के रास्ता में चलने के बजाय परमेश्वर के रास्ता के विरोध वह चलने की सोचते हैं। दूसरों द्वारा स्वीकार किए जाने, उनकी राय और उनकी मांगों और हमसे उनकी अपेक्षाओं के अनुरूप होने के बारे में चिंतित होने के बजाय पत्रस विश्वासियों को सलाह देता है कि हम उन लोगों के प्रति दयालु और प्रेमपूर्ण रहें जिनके साथ हम संपर्क में आते हैं। कहता है 1 पत्रस 4:8-9 में, उनके साथ मिले, उनसे दया का व्यवहार करें, लेकिन जब बुराई का सलाह हुए दे तो हम पवित्र शास्त्र का बात ही माने, उसी से लिपटे रहे और परमेश्वर के आज्ञाओं के पीछे चले। पत्रस ने अपने समय में बहुत सी चीजें देखी थी और उसने उनमें से कुछ को इस अंश में सूचीबद्ध किया है। यीशु का पहाड़ पर रूपांतरण, जो 2 पत्रस 1:18 में मिलता है, और यीशु के बारे में भविष्यवाणियों की पुष्टि 2 पत्रस 1:19 में। इसमें से प्रत्येक ने पत्रस को गहराई से प्रभावित किया था, फिर भी वह अंतिम बिंदु भविष्यवाणियों पर अधिक समय व्यतीत करता है। इसका एक शिष्य के रूप में उसकी अपनी असफलताओं से कुछ लेना देना हो सकता है। कितनी बार पत्रस ने यीशु की बातों को नहीं सुना, क्योंकि उसे लगा कि वह पहले से ही जानता है कि क्या कहा जा रहा है। क्या ऐसा वह नहीं सोच रहा था? कितनी बार यीशु ने यरूशलेम में मुख्य याजकों के हाथों अपने आने वाले व्यवहार की भविष्यवाणी की थी। फिर भी जब कई अलग अलग अवसरों पर ठीक वैसा ही हुआ जैसा यीशु ने कहा था, तो पतरस बिना तैयारी के पकड़ा गया। संभवतः इन सभी असफलताओं में सबसे दर्दनाक वह थी जब यीशु ने भविष्यवाणी की थी कि पतरस उसे अस्वीकार या इनकार कर देगा। पतरस को इतना यकीन था कि ऐसा कभी नहीं हो सकता, लेकिन जब ऐसा हुआ तो यह उसके जीवन का सबसे निचला बिंदु रहा होगा। शायद यही कारण है कि पतरस ने स्पष्ट किया कि यीशु का वफादार अनुयायी कैसे बने। वह अनुयायियों को अत्यंत महान और बहुमूल्य प्रतिज्ञाओं की याद दिलाता है जिसके माध्यम से वे ईश्वरीय स्वभाव के सहभागी हो सकते हैं, उन लोगों के विपरीत जो उस भ्रष्टता के द्वारा कैद हैं, जो संसार में वासना के द्वारा है, दूसरा पत्रस 1:4 में मिलता है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि विश्वासी वास्तव में भ्रष्टता से बच गए हैं, वह कई परस्पर जुड़े गुणों को सूचीबद्ध करता है जो ईसाई जीवन शैली को परिभाषित करते हैं। विश्वास, सद्गुण, ज्ञान, आत्मसंयम, दृढ़ता, भक्ति, भाईचारे की दया और प्रेम, दूसरा पत्रस 5:8 तक में मिलता है। पत्रस आगे कहता है कि यदि विश्वासी इन मूल्यों को अपने जीवन का हिस्सा बना लें तो वे ठोकर नहीं खाएंगे, और उनसे आग्रह करता है कि वे परिश्रम पूर्वक अपने बुलावे और चुनाव को निश्चित करें, दूसरा पत्रस 1:10। प्रकाश और अंधकार के बीच यीशु के अनुयायियों और बुराई के प्रवर्तकों के बीच की लड़ाई अपने चरम पर पहुंचने वाली है। शैतान एक भूखे दहाड़ते हुए शेर की तरह अपने अगले भोजन की तलाश में है, जैसा हम पढ़ते हैं 1 पत्रस 5:8 में। मजाक उड़ाने वालों के एक समूह द्वारा सहायता प्राप्त है अपने तर्कसंगत और वैज्ञानिक तर्कों, दूसरा पत्रस 3:3-4 के साथ। ये मजाक उड़ाने वाले विश्वासियों के विश्वास को बेअसर करने की कोशिश करते हैं। पत्र सुझाव देता है कि जो चीज उन्हें प्रेरित करती है वह उनकी कामुक जीवन शैली को बनाए रखने की उनकी इच्छा है, दूसरा पत्रस 3:3 और यहूदा 18 में देखा जा सकता है। वे तर्क देते हैं कि यीशु नहीं आ रहे हैं क्योंकि सब कुछ वैसा ही चल रहा है जैसा हमेशा चलता रहा है। इस मजाक में एक बहुत ही परेशान करने वाली बात है। यीशु ने कहा, मैं फिर आऊंगा, जिस प्रतिज्ञा को हम यूहन्ना 14:1-3 में पाते हैं। लेकिन ये उपहास करने वाले वास्तव में कह रहे हैं यीशु फिर नहीं आएगा, दूसरा पत्रस 3:4 में पाते हैं। यह अदन की प्रतिध्वनि है जहां परमेश्वर ने कहा, भले और बुरे के ज्ञान के वृक्ष का फल तुम ना खाना, क्योंकि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन अवश्य मर जाओगे, उत्पत्ति 2:17। हालांकि शैतान ने सांप के जरिए कहा, तुम अवश्य नहीं मरोगे, उत्पत्ति 3:4। यहाँ परमेश्वर के वचन का सीधा विरोधाभास है, जिसे अब सिर्फ एक आवाज से नहीं जैसे कि बगीचे में था, बल्कि हर जगह एक स्वर में दोहराया गया है। इस झूठ की एक मुक्तिदायक विशेषता यह है कि पत्रस ने इसकी भविष्यवाणी की थी। जब भी हम किसी को यीशु के फिर से आने के विचार का उपहास करते हुए सुनते हैं तो वे खुद भविष्यवाणी की एक और पूर्ति बन जाते हैं। हालांकि इतिहास ने पहले भी एक भयावह जल प्रलय द्वारा पृथ्वी के विनाश को देखा है, लेकिन उपहास करने वाले लोग इसके बारे में जानना नहीं चाहते हैं। वे यह स्वीकार नहीं करना चाहते हैं कि परमेश्वर का उनके व्यक्तिगत जीवन के विकल्पों से कोई लेना देना नहीं है। वे इस तथ्य से भी बचना चाहते हैं कि वही परमेश्वर जिसने पृथ्वी पर जल भराव करने के लिए पानी जमा किया है, उसी तरह उसने पृथ्वी पर आग जमा की है ताकि महान न्याय दिवस पर इसे नष्ट कर सके, दूसरा पत्रस 3:5-7 कहता है। उनकी गलत उम्मीद यह है कि प्रकृति हमेशा की तरह चलती रहेगी। लेकिन जैसे जैसे साल बीतते जा रहे हैं, हम बाइबल के अनुसार पाते हैं कि आगमन के दिन के नज़दीक पहुंच रहे हैं और हमें उस वादे को थामे रहना है। किसी को लगता होगा कि दूसरे आगमन का इंतजार कभी खत्म नहीं होगा, लेकिन परमेश्वर के लिए समय कोई चिंता का विषय नहीं है। प्रभु के लिए एक दिन 1000 वर्ष के बराबर है और 1000 वर्ष एक दिन के बराबर है, पत्रस कहता है, दूसरा पत्रस 3:8 में। पूरे शास्त्र में अंत हमेशा करीब है, चाहे पुराने नियम में प्रभु का दिन हो या नए नियम में मसीह की वापसी। दानियल 2:34-35 और 44 पदों की क्लासिक समय की भविष्यवाणियां हमें स्पष्ट रूप से बताती हैं कि बुराई को कितने समय तक जारी रहने दिया जाएगा और परमेश्वर कितने समय तक प्रतीक्षा करेगा, इसकी एक सीमा है। भविष्यवाणियों में परमेश्वर पाप और पीड़ा को समाप्त करने और पृथ्वी को उसकी मूल पूर्णता में बहाल करने की अपनी रणनीति की रूपरेखा प्रस्तुत करता है। निर्दोष होना हमारा लक्ष्य है। अय्यूब का वर्णन इसी तरह किया गया था, निर्दोष इसलिए क्योंकि वह परमेश्वर का भय मानता था और बुराई से दूर रहता था, कहता है अय्यूब 1:1। इसी तरह मसीह जो परमेश्वर का मेमना है, हमें कलीसिया को पिता के सामने निर्दोष पेश करता है। यदि हम उसके पास आते हैं, यदि हम उसके धार्मिकता पर विश्वास करते हैं, जैसा कि हम पढ़ते हैं इफिसियों 5:27 में, पाप पर विजय पाने, विश्वास में बढ़ने और बुराई से दूर रहने तथा पवित्र और निर्दोष जीवन जीने की हमारी खोज में हमें हमेशा यीशु की धार्मिकता पर भरोसा करनी चाहिए। पत्रस ने चेतावनी दी कि उपहास करने वाले कहेंगे सब कुछ वैसा ही चलता है जैसा सृष्टि के आरंभ से है, दूसरा पत्रस 3:4। यह कोई नई बात नहीं थी, जल प्रलय से पहले भी यही भावनाएं व्यक्त की गई थी। समय बीतने के साथ प्रकृति में कोई स्पष्ट परिवर्तन ना होने के कारण जिन लोगों के दिल कभी कभी डर से कांप उठते थे, वे आश्वस्त होने लगे। उन्होंने तर्क किया, जैसा कि आज बहुत से लोग करते हैं, कि प्रकृति के ईश्वर से ऊपर है और उसके नियम इतने दृढ़ता से स्थापित हैं कि ईश्वर स्वयं उन्हें बदल नहीं सकता। यह तर्क देते हुए कि यदि नूह का संदेश सही होता तो प्रकृति अपने मार्ग से भटक जाती, उन्होंने उस संदेश को दुनिया के मन में एक भ्रम, एक महान धोखा बना दिया। उन्होंने चेतावनी दिए जाने से पहले जैसा ही करके ईश्वर की चेतावनी के प्रति अपनी अवमानना प्रकट की। उन्होंने दावा किया कि यदि नूह ने जो कहा था उसमें कोई सच्चाई होती तो प्रसिद्ध लोग, बुद्धिमान, विशेष विवेकशील, महान लोग इस मामले को समझ जाते। एलन जी वाइट इस तरह का वर्णन करती है पेट्रियार्क्स एंड प्रोफेट्स में पृष्ठ 97 में। आज महान लोग हमें कुछ ऐसा ही बताते हैं, प्रकृति के नियम निश्चित और निर्धारित हैं और सभी चीजें पहले की तरह चलती रहती हैं। महान लोग तब गलत थे और वे अब भी गलत हैं। कोई आश्चर्य नहीं कि पौलुस ने लिखा, क्योंकि इस संसार का ज्ञान परमेश्वर के निकट मूर्खता है, लिखा है 1 कुरिन्थियों 3:19 में। यह जल प्रलय के समय था, यह पत्रस के समय में था और यह हमारे समय भी है। इसलिए प्यारो भाइयों और बहनों, आइए हम दुनिया के चीजों को देखते हुए परमेश्वर के वचन पर भरोसा करें, परमेश्वर के बातों पर विश्वास करें कि दुनिया का अंत निकट है। प्रभु यीशु मसीह अपने लोगों को, धर्मी लोगों को लेने के लिए जल्द ही आ रहा है। हमें तैयार हो जाना है, प्रभु यीशु मसीह का धार्मिकता को अपनाना है, पाप का जीवन को छोड़ना है और उसके पीछे चलना है। दुनिया जैसा चल रही है वैसे हमें चलते नहीं रहना है, नहीं तो हम खो जाएंगे। परमेश्वर हमें बुला रहा है, अपना आत्मा के द्वारा हमारे हृदय में वह काम करता है। प्यारो, इसीलिए आइए हम उसके वचन को सुने, उसके आत्मा के बात को सुने और उसके निकट आए। परमेश्वर हम सबों को बचा लेंगे। परमेश्वर हम सबों को आशीष देवे, परमेश्वर आपको आशीष देवे। आइए हम प्रार्थना करें। ये हमारे पवित्र महान परमेश्वर पिता, हम तेरे पैरों के सम्मुख आते हैं पिता, हम सबों को तू ग्रहण कर। हम तुझे धन्यवाद देते हैं इस वचन के लिए पिता, तू हमें बचाने के लिए शीघ्र आ रहा है। प्रभु यीशु मसीह अपने धर्मी लोगों को लेने के लिए आ रहे हैं। दुनिया पाप में बढ़ते जा रही है पिता परमेश्वर, में मन फिराने और तेरा राह में आने के लिए बुद्धि दे।
इसके साथ ही हम लगभग अपने प्रसारण के समाप्ति पर आ गए हैं। परमेश्वर के वचन को अधिक जानने के लिए आप हमेशा हमें 1800833231 पर संपर्क करें या हमें bible@awr.org पर ईमेल करें।
हमारा डाक पता है AWR एडवेंटिस्ट वर्ल्ड रेडियो, पोस्ट बॉक्स 1446, पुणे 411037, महाराष्ट्र, भारत।
आप हमें इस पर ईमेल भी कर सकते हैं hindiresamc@advent.org।
मैं हूं गौरव चौहान
और मैं हूं सारा मंडोरा। AWR की ओर से विदा लेते हैं।
अपने परिवार और दोस्तों के साथ फिर से हमसे जुड़ें। तब तक हम आपको अलविदा और ईश्वर के आशीर्वाद की कामना करते हैं।